أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت نمبر 272 سے آج ہم تفسیر دیکھتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر کافی باتیں پڑھی ہیں اور آج بھی اسی کی کنٹینیویشن ہی سمجھ لیں کہ جب انفاق کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ انصار کے کئی رشتے دار تھے جن پر وہ صدقہ کیا کرتے تھے، لیکن اب جب وہ رشتے دار کئی مسلمان نہیں ہوئے تو وہ ان کے اوپر خرچ کرنے سے گریز کرنے لگے، اوائڈ کرنے لگے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہوں تب ہم ان پہ خرچ کریں، تو یہ کائنڈ آف ان کے انسینٹیو دینا بھی مقصود تھا کہ چلو مسلمان ہو گئے تو ہم تم پہ خرچ کریں گے. تو اس سے یہاں پہ منع کر دیا گیا. دوسرا، اس کی شان نزول میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھیں ان کی والدہ مشرکہ تھیں، تو وہ جب ان کے پاس آئیں اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو مشرکہ ہیں تو میں ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کروں، کیسے کروں، ان کے اوپر سپینڈ کروں نہیں کروں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور یہ سوال پوچھا کہ میری والدہ تو مسلمان نہیں ہے تو پھر میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، ان کے اوپر سپینڈ بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج بھی ہمارے ساتھ یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیر مسلموں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو ان آیات میں آج کے بھی سبق کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے. تو ساری آج کی عمل کی باتیں ہیں، ہر ایک آیت میں عمل کا آپ کو کوئی نہ کوئی نقطہ ملے گا. اسی لیے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ عمل کی باتیں آپ ایک سائٹ پہ لکھ لیا کریں یا اس کے لیے سپیس چھوڑ دیا کریں تاکہ جب بعد میں آپ دوبارہ وہ نوٹس پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں، تو جو ریلیونٹ باتیں عمل کی وہ آپ نوٹ کرتے جائیں، عمل کی بات ہائی لائٹ کر کے، یعنی یہ لفظ لکھیں عمل کی بات، اور اس کے بعد اس کے نیچے پھر سارے جو پوائنٹس ہیں اس آیت سے نکلتے عمل کے وہ آپ نے لکھنے، تاکہ جب آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس آیت سے مجھے کیا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ نوٹس میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تو کم از کم عمل کی باتیں ضرور لکھ لیا کیجیے، کیونکہ ہم یہ قرآن پڑھی عمل کے لیے رہے ہیں نا، پھر سے ہم دہرا لیتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کس پہ سپینڈ کرنا ہے، اسی طرح کب سپینڈ کرنا ہے، اور پھر سپینڈنگ کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس کا اجر کیا ملے گا ہمیں. پھر جب جہاں مال کی بات آئی وہاں پر ظاہر ہے کہیں آپ کسی ضرورت مند کو دیں گے اور کہیں کوئی ضرورت مند آپ سے قرض بھی مانگ لے گا، تو جب قرض کسی کو دیا جائے تو اس میں کون سی چیز ہے جس کے لیے کہا گیا کہ وہ حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے، آپ سے جو بھی قرض دیے جائیں وہ قرض سود کی بیس پہ نہ ہوں. پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت نہیں کرتا اور ان کن سے کرتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ سود کی حرمت کتنی شدید ہے، یعنی کچھ سود کا حرام کیا جانا اتنا شدید ہے، اس کی سزا کیا ہے جو پھر بھی سود میں پڑا رہتا ہے. اور آج ہم وہ بھی خوبصورت آیت دیکھیں گے جو سب سے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی. تو آیت 272 کا شان نزول میں نے آپ کو بتایا ہے. دیکھتے ہیں آیت، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ए नबी, आपके जिम्मे हिदायत देना नहीं है, ये आपका काम नहीं है। यहाँ पे हिदायत से मुराद लिख लें हिदायत तौफीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम हिदायत इरशाद और हिदायत तौफीक के बारे में बताया था, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसको वो चाहता है। जब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्यों ये आयत आई जबकि पीछे इन्फाक की बात आ रही थी, तो मैंने शाने नजूल में आपको बताया वजह ये थी कि उन लोग उनको अवॉइड करना शुरू हो गए थे जो लोग काफिर थे, अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो यहां से अल्लाह ताला ने बता दिया कि किसी की हिदायत थोड़ी आपके हाथ में, आपका काम पहुंचा देना। आपका काम ये नहीं है कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के मुसलमान करें और तभी आपने उनको देना है कुछ। ठीक है, जो ज़कात है वो सिर्फ मुसलमान ही को दी जाएगी और मुसलमान ही से ली जाएगी, लेकिन जो आम सदकात हैं वो आप किसी को भी दे सकते हैं, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी मुफलिस है। और ख़ास तौर पे हम लोग जैसे गैर मुस्लिम मुमालिक में जो रहते हैं वो ख़ास तौर पे ये सोचते हैं कि अब इनको काफरों को दें ना दें, इसकी मदद करें या ना करें, क्या करें, ये तो मुशरिक है, ये तो फलां है, ये तो अल्लाह ताला को नहीं मानता, तो हमने उसको तो फिर शायद देना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें बता दिया गया कि आप के हाथ में किसी हिदायत नहीं है। वमा तुनफिकु मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, जो आप दोगे वो तो अपने लिए दे रहे हो ना। हम असल में देखते ही हम किसको दे रहे हैं, देखना ये कि मैं तो अपने लिए ये कर रहा हूं, तुम्हारे अपने लिए ये भला है, तुम्हारा अपना इसके अंदर फायदा है। तो हम जब देने लगे तो हम इस चीज को ना देखेंगे इसका दीन मजहब क्या है, ये देखें इसको कितनी जरूरत है, ये कितना लाचार है, कितना है इसके इसको मोहताजी है, वो देखें। इसी तरह जो मुसलमान मुल्कों में रहते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो ज्यादातर ये देखते हैं कि ये हमारे फिरके से है कि नहीं है। अगर तो ये हमारे फिरके को मानता है तो फिर हम इसको देंगे, अगर हमारे फिरके को नहीं मानता तो हमने इसको इमदाद भी नहीं करनी, इसको देना भी नहीं, सिर्फ हम अपने अपने यानी जो हमारे अपने उसके हैं फिरके के, या अपने हमारे इमाम को मानने वाले हैं, हम सिर्फ उनको ही देंगे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान जब दे रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए दे रहा है, ये याद रखना चाहिए, तभी फिर आसानी होगी देने में। और एक हदीस से हमें ये पता भी चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के बारे में बताया कि एक आदमी अपना सदका लेके रात को निकला तो किसी चोर के हाथ में उसने सदका रख दिया। सुबह को उसने लोगों को सुना वो क्या बातें कर रहे थे, ये देखो जी रात को किसी ने चोर को ही सदका दे दिया। तो उसने जब सुना तो कहता है अल्लाहुम्मा लकल हम्द, चोर के हाथ पे रखने पे भी उसने शुक्र ही अदा किया। दूसरी रात वो निकला तो एक बदकार औरत के हाथ में रखाया। सुबह को लोग बातें करते लो जी आज किसी बदकार औरत को कोई सदका दे गया, तो उसने कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्द। फिर तीसरी रात निकला तो मालदार के हाथ में सदका रख दिया। सुबह हुई तो लोग बातें करते लो जी आज तो किसी पैसे वाले को ही किसी ने दे दिए पैसे, सदका दे दिया। उसने फिर कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये जो जानिया को दिया, चोर को दिया, मालदार को दिया, इस पे भी अल्लाह तेरा शुक्र है। रात को उसको ख्वाब आया कि जो तूने चोर को दिया मुमकिन है वो अपनी चोरी से बाज आ जाए, जो तूने बदकार को दिया शायद बदकारी से बचने लगे, जो अमीर को दिया तो शायद अमीर को इबरत आ जाए कि मैं भी कोई सदका कर दूं अल्लाह ताला के रास्ते में। तो यानी सदका दिया हुआ तुम्हारा जाया नहीं हुआ, बात यह है कि तुमने किस नीयत से दिया, किस वक्त दिया। मैंने आपको जैसे बताया था कि मरने वक्त तो सारे ही कहने लगते हैं फलां को दे दो फलां को दे दो, अच्छा दे दो, अब उसको पता है कि मैं तो जा ही रहा हूं तो अब दे ही दो किसी को। असल बेहतरीन सदका वो है जब इंसान सेहत की हालत में है, उसकी आगे उम्मीदें हैं, वो सोचता है प्लानिंग्स है ये करूंगा वो करूंगा, उस वक्त उसके लिए निकालना मुश्किल होता है। जब बीमार पड़ जाए, बिस्तर पे पड़ जाए, उसको अपना कोई होप नजर नहीं आ रहा, फिर तो इंसान सारे ही देने शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि इस हदीस से भी हमें पता चला कि किसको आप देते हो ये नहीं, ये आप देखो कि मैंने अपने लिए दिया है। फिर आप देखें एक और बात यहां पर आया, लैसा अलैका हुदा हूं, ए नबी आपके जिम्मे इनकी हिदायत नहीं है। ये क्यों कहा गया जबकि दूसरी जगह पे कुरान करीम में आता है फइन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, ए नबी आप यकीनन सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत देते हैं, तो फिर यहाँ पे आ गया हिदायत ही नहीं आपके हाथ में। तो मैंने जो आपको पिछली दफा बताया था उसी के सामने रखते हुए आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि एक होती है हिदायत इरशाद और एक है हिदायत तौफीक। हिदायत इरशाद तो देना यानी हर एक के जिम्मे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यानी रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना, रहनुमाई करना, ये नबियों का काम था। इसी से पता चलता है ना, हमें डिक्शनरी देख के हम सिर्फ कुरान को नहीं समझ सकते, वरना अगर लुगत से ही देख रहे होंगे तो फिर आप कहेंगे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां पे तो ये लिखा है और यहाँ पे क्या है। ये हिदायत भी कई तरह की है ना, 8-9 माने इसके मिलते हैं और हर दफा अलग माना होगा, और हिदायत के भी कई लेवल्स हैं। तो यहाँ पे जो हिदायत कही गई वो हिदायत तौफीक का कहा गया कि वो हिदायत तौफीक आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कौन सी हिदायत है? हिदायत इरशाद। जो हिदायत इरशाद है वो क्या होती है? दिखाना सही रास्ते का, दिखा देना, बता देना। मगर क्या कोई दिखाने से बताने से क्या हिदायत भी हासिल कर लेगा, या उसको कर लेनी होगी, या करवा सकते हैं आप क्या? अब इतने लेक्चर हम सुनते हैं, सब करते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें हर तरफ हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई हमें चला तो नहीं सकता ना। तो वो हिदायत कौन सी है? वो हिदायत तौफीक है के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे देना, और इंसान उसी रास्ते को चूज कर ले, तो वो है हिदायत तौफीक। जैसे कि आपका जीपीएस है, इससे आप समझे, आपका जीपीएस आपको बता रहा है कि इधर इधर चलो, और कई दफा हम कह देते हैं ना इसको क्या पता, मुझे पता है मैं खुद ही जाऊंगी, वो बोलता रहता है लेकिन आप नहीं सुनते। अब वो जो बोल रहा है ना वो आपको रहनुमाई दे रहा है, हिदायत इरशाद है वो, लेकिन इसके ऊपर चलना, अब आपने ये डिसीजन मेक किया, एक है वो उसका काम है, वो भी जरूरी है, वरना तो आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आपकी अब मर्जी है कि आप उसके ऊपर चलते हैं या नहीं चलते, ये आप दूसरी हिदायत है। और फिर चलते चलते भी क्या आप मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं या नहीं, अगर आपने चूज कर लिया कि मैं इसकी बात सुनूंगी, तो ये चूज कराना ये हिदायत तौफीक है। अल्लाह ताला ही मदद करेगा तो कोई चूज करेगा कि मैंने सीधे रास्ते पर चलना है। और फिर अब आपने उसकी सुन ली, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने कहा आगे तो मुझे खुद ही आता है, अब इसको बोलने दो, अब आपने कहीं और एग्जिट ले लिया, तो ये भी हिदायत तौफीक है कि अल्लाह ताला उसी रास्ते पर चलाता रहे इंसान को। और फिर मंजिल तक भी पहुंचा दे। तो जब हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं ना, तो क्या है? नंबर 1 रास्ता दिखा देना, ये है जो नबियों का काम है। जैसे कि आपको दुनिया में जीपीएस रास्ता बता देता है। नंबर 2 इहदिना सिरातल मुस्तकीम हिदायत दे दे मुझे का मतलब क्या है? मुझे तौफीक दे दे, एबिलिटी दे दे कि मैं चूज कर सकूं सही को गलत से, बहुत सारे रास्ते हैं, मैं चूज कर सकूं सही रास्ता। तो ये एबिलिटी देना ये अल्लाह ताला का काम है। फिर आगे कि मैं जो चूज कर लिया ना, अब मुझे चला भी दे इसके ऊपर। अब हमने भी देखें चूज किया हुआ कि ये सही है और हम इसको सीख भी रहे हैं, लेकिन क्या हम इसके ऊपर चल रहे हैं? ये तौफीक देना अल्लाह ताला का काम है। फिर चौथी चीज है कि मुझे इस पे कायम भी रखना, कायम भी रखना, ये ना हो कि मैं गलत एग्जिट ले लूं, तो ये भी हिदायत है। और फिर पांचवी चीज है कि जन्नत तक पहुंचा देना, यहां पे जाके हिदायत मुकम्मल होती है, इतने लेवल्स हैं, इसीलिए जन्नती कहेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें हिदायत दे दी इसकी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हिदायत ये नहीं कि किसी ने रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते को चूज करना भी ना, आप देखें कई लोग नहीं चूज कर रहे, उनके सामने है रास्ता, उनको आप बताते हैं, वो नहीं इस्लाम लाते, वो नहीं इस रास्ते को चूज करते, वो अपने कुफर पे ही रहते हैं। कई हैं जिन्होंने चूज तो कर लिया है लेकिन वो चल नहीं रहे, कई चल पड़ते हैं, चल भी पड़े, लेकिन लास्ट टाइम हमने फिर बात की थी इसी के ऊपर कि आखिरी जिंदगी में आके कुछ और ऐसे काम कर लेते हैं, पिछला सारा किया कराया गारत हो गया। तो कायम रहना ये भी हिदायत है, फिर उसके बाद जन्नत तक पहुंचा देना ये भी हिदायत है, ठीक है। तो हिदायत के इतने लेवल्स हैं, तो ये जो चार चीजें हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते थे, वरना अबू तालिब कुफर पे ना फौत होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिदायत इरशाद दे सकते। तो अब समझ आ गई ना, अब इसको कभी कंफ्यूज नहीं आपने करना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत देते थे, आपका नाम भी हादी है, तो वो फिर कौन सी हिदायत है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत देता है, और ये उसकी हिकमत पे मबनी होता है, वो जिसके अंदर देखता है तलब तड़प हिदायत का पाने की, वो उसको हिदायत दे देता है, इसकी फितरत सलीम है। तो आप जो खर्च करेंगे, अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया ना, खर्च करने में हिदायत का क्या बीच में मामला आ गया, कि आप आपका काम नहीं, आप खर्च करते हुए पहले ये चेकिंग करो कि ये इसका दीन ईमान क्या है, ये किस फिरके से है, ये किसको मानता है, ये छोड़ दें आप। आप जो खर्च कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और देखें ये जो मैंने आपको हदीस बताई, क्या पता आप किसी को दें और आपके देने की वजह से ही वो इस्लाम की तरफ मायल हो जाए, सही अकीदे की तरफ मायल हो जाए। आप देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम का उस्वा क्या था, बहुत देने वाले थे, बहुत देने वाले थे। जैसे मैंने आपको वो वाकया भी बताया था कि वो आदमी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उसको इतना माल दे दिया, इतना दे दिया, ये फतह मक्का के बाद की बात है, हुनैन के गालिबन जिक्र है, कि इतना दिया कि वो चीखता हुआ जा रहा था अपनी कौम को कहता हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने का, कह रहा था कि वो तो इतना देते हैं, इतना अता करते हैं। यानी जब आप किसी को देते हैं ना तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। आप देखिए ना, आपको अपने रिश्तेदारों में से भी कौन ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो बहुत देने वाले थे, जो बहुत कंजूस होते हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं होते। तो जो बखील होता है ना वो अल्लाह ताला से दूर होता है, जो गनी होता है वो अल्लाह ताला के करीब होता है, शैतान से दूर होता है। और शैतान को गनी से ज्यादा डर लगता है, उसको बकील से नहीं लगता, बकील चाहे कितना ही इबादत गुजार हो लेकिन उसको बकील से डर नहीं लगता, वो पता है इसने क्या कितना कर लेगा, ठीक है। वमा तुन्फिकूना इल्लबतिगा वजिल्ला, और अब बताया गया नहीं तुम खर्च करोगे, असल में यहाँ पे नहीं तुम खर्च करोगे कह के ये बता दिया गया कि ऐसा ना करना तुम, मगर सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला की रजा, सिर्फ और सिर्फ, यानी एक ही मकसद है, इसीलिए जैसे मैं कहूं कि मसला नहीं, कि नहीं कोई पास हुआ सिवाय फलां के, नहीं को इसका मतलब है सिर्फ वो बच्चा पास हुआ है, मसलन सिवाय जैद के नहीं कोई पास हुआ, इसका मतलब सारे ही फेल हो गए। अब वो एक एक्सक्लूड करने के लिए इस तरह से कहा जाता है, अगर मैं सिर्फ कहती जैद पास हुआ तो हो सकता कोई और भी पास हो गया होता, लेकिन जब मैं कहूं कि नहीं कोई पास हुआ सिवाय जैद के, तो अब मैंने बिल्कुल एक को अलग कर दिया और बाकी सब की नफी कर दी। तो इसका मतलब जितनी भी नियतें की जाएं खर्च करने में, उसमें से सिर्फ एक ही नियत है जो बेहतरीन है, जिसके ऊपर अजर मिलना है, वो है इब्तिगा वजहिल्ला, अल्लाह का चेहरा चाहना। बहुत सारी नियतें होती है ना खर्च करने में, तो नहीं तुम खर्च करोगे मगर, तो सब जितना जितने भी मकसद हो सकते हैं खर्च करने के, देने के, किसी को भी सदका, जो भी मकसद हो सकता है, उन सब मकासिद की नफी, ये कहलाता है माँ नाफिया। ठीक है, मैंने आपको माँ के भी कई बताए थे ना, माँ शर्तिया भी होता है, माँ नाफिया भी होता है, इनके कई आपको उससे पता चलेगा। जैसे अब माँ नाफिया है ना, तो माँ तुनफे खूना नून मौजूद है। अब पहले माँ आया, वह माँ तुनफिकु में माँ आया, तो वो माँ शर्तिया था, और जो तुम खर्च करोगे, इसलिए वो नून गिर गया। देखे तुनफिकुना क्यों नहीं आया वहां पे, यहाँ पे माँ तुनफिकुना आया, जबकि माने में तो हम दोनों में लिख रहे हो तुम खर्च खर्च करोगे, लेकिन तुम खर्च करोगे एक जगह वाओ अलिफ है एंड में, और एक जगह वाओ नून है। क्या वजह है? इसलिए कि जो माँ पीछे आया ना, उसका इफेक्ट हुआ है। जो माँ पीछे आया वो पहला माँ शर्तिया था, जो खर्च करोगे तुम उसमें नहीं का नहीं कर सकते। यहां पे मां नाफिया है, नहीं तुम खर्च करोगे, क्योंकि आगे ये तो नहीं तुम खर्च करोगे इल्लब्तिगा मगर अल्लाह ताला का चेहरा तलाश करने के लिए। वह मां तुम फिकु मिन खैरिन, और जो तुम खर्च करोगे खैर में से, युवफा इलैकुम, वो पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हारी तरफ, तो यानी तुम्हें पूरा पूरा उसका दिया जाएगा, जो भी तुम खर्च करोगे माल में से। और इसकी मिसाल आप देखें, मैंने आपको बताया था नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि एक अगर खजूर भी कोई खर्च करता है अल्लाह ताला के रास्ते में इखलास के साथ, तो अल्लाह ताला उसको पालता है और उहद पहाड़ के बराबर बना देता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी खैरख्वाही और खलूस, और जिस दिल से उसने दिया तो बढ़ा बढ़ा के उसका अजर इतना बड़ा कर देता है, जो वो कयामत के दिन देखेगा, ये तो सिर्फ एक खजूरी मैंने दी थी, ये खजूरी इतनी बड़ी हो गई। पालेगा अल्लाह ताला उसको, पालता है जैसे तुम अपने घोड़े के बच्चे को पालते हो, यह हदीस में आया, पाल पाल के उसको इतना बड़ा कर देता है। देखें खलूस से किया हुआ छोटा सा अमल भी कितना बड़ा बन जाता है, और बड़े बड़े अमल भी बाज दफा हबा मंसूरा बन जाएंगे, बड़े बड़े अमल होंगे, बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, लेकिन गर्द बना के उड़ा दी जाएंगी, जिनकी लोग दुनिया में बड़ी तारीफें करते थे, जिनको लोग बड़ा समझते थे कि ये तो बड़े बहुत बड़ी खूबी है, बड़ी नेकी है इसकी, देखो क्या बात है इसकी। तो बात ये नहीं कि लोग हमारी चीजों को देखकर क्या समझते हैं, इसे कभी ना धोखा खाया कर। आपने छोटा सा भी दिया अल्लाह आलम अल्लाह ताला उसको कितना बड़ा बना दे, बड़े बड़े अमल देख के भी खुद बड़े इंस्पायर ना हो जाए करें कि मेरे पास ये बड़ी नेकी है, हमें क्या पता है कि हमारी कौन सी नेकी कबूल हो रही है कि नहीं, हमने उसमें क्या क्या कर दिया। और दूसरी बात ये, कभी भी बड़ी नेकियां करने के पीछे ऐसे ना भागे कि बस बड़ा ही कोई काम होगा जिसमें बड़ी नामवरी होगी, जिसमें कोई शो भी हो, पता चले लोगों को जी मैंने ये काम किया, ये काम मुझे छोटा सा काम दे दिया, एक वैक्यूम करना है यहाँ पे, एक जूते उठा के सीधे करने हैं यहाँ पे मस्जिद में रखने हैं, एक अकाउंट्स देखने हैं, या एक छोटा सा एक टेस्ट चेकिंग का मसलन काम है, तो उसका तो किसी को पता ही नहीं चलना, पता चले मैं ग्रुप लीडर बनी हूं, मैं कोई वो बनी हूं, तो वो काम हमें पसंद आते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें नहीं पता कि एक छोटा काम जिसको लोग शायद कुछ ना समझते हो, वो ही क्या पता हमें पार करा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी तुम खैर में से खर्च करोगे पूरा पूरा तुम्हें दिया जाएगा, यानी तुमसे कोई वह अंतुम ला तुझलामून, तुमसे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा कि क्यामत के दिन कहीं कोई बदला रह जाए, कोई नेकी दिखाई ना दे, कोई कहाँ चली गई, गायब ही हो गई, अनलेस इंसान अपने खुद अमाल की वजह से किसी नेकी को जाया कर दे, अदरवाइज अल्लाह ताला तो रीपे करेगा और कई गुना करके करेगा। और उसकी एक झलक आपने पिछली आयत में देख ली ना, कि एक दाना जैसे जमीन में डाला जाए और 7 बालियां निकले और हर बाली पे 100 दाने हो, 700, एक बीज से 700 दाने मिल गए। कौन सी दुनिया की तिजारत ऐसी है, 700 टाइम्स जो उसको करके दे दे किसी को। ये सौदा इसलिए कि इंसान के साथ नहीं है ना, इसलिए इतना मिल सकता है। ये रब्बुल आलमीन के साथ है, जो गनी है वो इतना इजाफा कर देगा। जो आप देते हैं कभी इस सोच के साथ परेशान ना हो कि हाय अल्लाह पता नहीं मेरा कम हो गया, घट गया, नुकसान हो गया, चला गया मुझसे, बल्कि वो यकीन रखें कि अल्लाह ताला का फरमान है। ये हमारा ईमान होना चाहिए कि ये गया नहीं, मुझे लौटा दिया जाए। इस दुनिया में भी लौटाया जाता है और आखिरत में तो कितने गुना करके, और इस दुनिया में किस सूरत में लौटाया जाता है, कभी तो इंसान को माल में ही इजाफा हो जाता है, कभी अल्लाह ताला बरकतें इतनी अता फरमा देता है कि वो थोड़े से माल में इतनी बरकत हो जाती है कि जैसे आप को बताया जाता, आप आगे ये वाक्य आएगा भी कि थोड़ी सी चीज बहुत सारे लोगों को काफी हो जाती है, थोड़े से पैसों में बहुत सारी जरूरियात पूरी हो जाती है। आप कहते हैं इतनी बरकत इस पैसे में, इस पैसे से ये भी मेरा काम हो गया, ये भी मेरा काम हो गया, इतने काम हो गए, और कभी इतना पैसा होता है और पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, उड़ ही गया, और आप सोचते ही रह जाते हैं मैंने लिया क्या, किधर चला गया, तो बरकत उठ जाती है। तो अब इस आयत से हमने अमल की बात क्या ली, एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में नहीं है किसी की हिदायत पे चलाना किसी को, ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ बता देना था, तो फिर किसी और का काम कैसे हो सकता है, कोई और है जो किसी को सीधा कर दे, किसी को हिदायत दे दे, वो चाहे फलां पीर साहब हो, चाहे फलां इमाम हो, चाहे फलां हो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी को नहीं चला सकते। दूसरी हमें बात पता चली कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, यानी आप किसी को जबरदस्ती हिदायत पर नहीं ला सकते और ना ही आपको लाना है, आपकी ये जॉब ही नहीं है। तीसरी आपको ये बात पता चली जब बता दिया गया लैसा अलैका हुदा हूं, तो अब आप खुद गम क्यों लेते हैं अपने ऊपर कि फलां नहीं सुन रहा, फलां नहीं आ रहा। आज जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गम लेते थे, आपके ऊपर तो इनकी हिदायत है ही नहीं है, तो हमें इसे क्या पता चला कि एज दाई जब हम दावत देने के लिए लोगों को निकलते हैं तो हम देखते हैं कि कोई मान नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, क्या करें, तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो डिसहार्ट नहीं होना आपने, कई दफा लोग कहते हैं ना हम क्या करें, हम वहां पे बूथ लगा के खड़े रहे, टेबल लगा के खड़े रहे, कोई आया ही नहीं, कोई ये नहीं हुआ, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना, रिजल्ट्स जनरेट करना आपका काम है कि आपने शीट्स भर भर के लेकर आनी और तभी आप बड़ी कामयाब हैं। तो ये ना नबी का काम था ना किसी दाई का काम था, और इसमें आपकी नाकामी नहीं है अगर कोई भी नहीं सुन रहा तो, क्योंकि लैसा अलैका हुदा, ठीक है। दूसरी बात, एक और बहुत अहम बात है, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते अगर कोई मसलन गलत काम करता है, मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो किसी स्टूडेंट को हिदायत नहीं दे सकते। अगर स्टूडेंट गलत काम करते हैं तो इसमें टीचर को इल्जाम देना या इदारे को इल्जाम देना कि ये इदारा ऐसा है, जैसे लोग बाज दफा कहते हैं हाँ जी वो फलां तो अर्रहमा की स्टूडेंट और देखो उसने ये किया, तो इसमें इदारे का क्या कसूर है, इदारा किसी को हिदायत नहीं दे सकता, टीचर किसी को हिदायत नहीं दे सकती, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। अब इस रास्ते के ऊपर चलना और चलते रहना ये ना टीचर का काम है, ना इदारे का काम है, ना उनकी ये जॉब है, ना जिम्मेदारी है, ठीक है। आप माशरे में भी देख लें, कोई भी घिनौना जुर्म हो जाए तो फौरन लताड़ना किसको शुरू हो जाते, ये दीनी हलके, ये उलमा का काम है, वो नहीं अपना काम कर रहे। भाई वो तो कर रहे हैं बेचारे, दो बताते ही हैं, लोग आ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, तो उनका क्या कसूर है, समझ आई बात। तो इससे हमें ये पता चला, और ये भी हमें अब अमल की बात समझ आ गई कि अब से हमने देते वक्त किसी को ये नहीं देखना कि को किसका दीन मजहब क्या है। हाँ जकात देते वक्त ये जरूर देखना, मगर उसके अलावा जब आम सदकात करने हैं तो फिर हमने कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इसके ऊपर उठ के हमने देना है। हाँ, मगर ये जरूर है कि रिश्तेदार हो तो और ज्यादा अजर है, मुसलमान रिश्तेदार है तो और डबल ट्रिपल अजर हो गया, हम साया भी है, रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है, तो और ज्यादा अजर हो गया, तो और ज्यादा अजर इसमें जरूर मिलता है। लेकिन ये नहीं कि आप दूसरे को दे ही नहीं सकते, और आप पहले ये इंतजार करें कि ये मुसलमान होगा तो फिर, क्योंकि किसी को हिदायत देना ये आपका काम है ही नहीं है। और जो खैर है, इससे मुराद देखिए माल लिया गया, तो माल इसका मतलब खैर तभी होता है, माल को तभी खैर कह सकते हैं जब वो हलाल माल हो। तो यहाँ पे इसका मतलब हराम माल की बात नहीं आ रही, सिर्फ माल नहीं यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे खैर कहा गया। तो हलाल माल ही खैर बनता है, हराम माल खैर नहीं बनता। ठीक है, अब आगे बात आ रही है कि सदकात किसको देने, कौन इसका मुस्तहिक है। जो लोग बहुत दफा इग्नोर हो जाते हैं, लिल फुकरा इल्लदीना उसिरू फी सबीलिल्लाह, ये सदकात, क्योंकि पीछे सदकात की बात आ रही है, ये सदकात है किसके लिए, लिल फुकरा, लिल फकीरों के लिए, तंग दस्तों के लिए, हाजतमंदों के लिए। अल्लदीना, कौन से वाले, वो जो उस से रूफी सबीलिल्लाह घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में। क्या मतलब घेर लिए अल्लाह के रास्ते में, यानी वो रोक लिए गए। किस चीज ने उनको रोका है, फी सबीलिल्लाह ने रोका है ना, यानी अल्लाह के रास्ते में जो वो काम कर रहे हैं उन कामों ने उनको रोक दिया, उन कामों की वजह से वो नहीं कर पा रहे ये काम जो के जैसे कमाई का है, अपने लिए कुछ जमा करने का है, अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करने का है, वो वाला काम उनके अब रीच में नहीं है, इसलिए कि जाहिर है अब वो फी सबीलिल्लाह काम करें या फिर वो कमाइयां कर लें। अब फी सबीलिल्लाह काम से मतलब यहाँ पे क्या है, इसके दो माने उलमा ने बयान किए हैं, एक है दीन के इल्म को सीखने सिखाने वाले, दूसरे जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकलने वाले, लड़ाइयों के लिए, जंगों के लिए निकलने वाले। आप देखें, अब पहले माने की तरफ जाते हैं, क्योंकि दूसरे माना हम इस वक्त हमारे लिए उस तरह से यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। पहले माने में दीन की खातिर यानी अल्लाह ताला के रास्ते में दीन को सीखना, दीन को सिखाना, इसमें जो मशगूल है, यानी आइदर वो स्टूडेंट है या वो टीचर है, या वैसे भी फी सबीलल्लाह में मसलन कोई मुअज्जिन है, नमाज पढ़ाता है और इमाम है, या ऐसे लोग जो मस्जिदों के काम करते हैं, मदारिस में काम करते हैं। अब क्या है, इनके पास इतना नहीं होता कि वो अपनी जरूरियात को पूरी तरह से पूरा कर सकें। उस जमाने में असहाबे सुफा थे, सुफा वाले, और ये वो तालिबे इल्म हुआ करते थे जो कि अपने घरों को छोड़ के मस्जिद नबवी में आके रहते थे, यहीं पे वो जो भी उनका खाना पीना सब कुछ यहीं पे था, ना तो यहाँ से कहीं जाते थे, ना वो जाके कोई कुछ कमाई कर सकते थे, क्योंकि जाहिर है वो सारा वक्त तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने में, दीन सीखने सिखाने में उनका वक्त गुजर रहा है। अगर वो कमाने में चले जाएंगे, जैसे हजरत उमर ने एक आदमी के साथ ये किया होता ना, अंसारी के साथ, कि एक दिन आप कमाने के लिए जाओ, एक दिन मैं जाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठ के सीखो दीन को, जिस दिन आप जाओगे तो मैं सीखूंगा, इस तरह करके उन्होंने बारियां लगा दी थी। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो हर्ज होता है ना फिर। तो अव्वलीन यहां पे मुराद असहाबे सुफ्फा है, क्योंकि वो ही लोग थे जो कि फुल टाइम एज स्टूडेंट्स दीन का इल्म लेने के लिए वहां पे मौजूद रहते थे, और जिसकी वजह से वो कोई और काम नहीं कर पाते थे। और उनके बाद भी जो भी ऐसे हालात में है कि मसलन है कि वो नहीं कुछ कमा सकता इस वजह से कि उसने अपने आप को वक्फ किया हुआ, तो वो भी इसमें शामिल है। एक होता है वो फकीर ना जो लोगों से मांगता फिरता है, एक वो फकीर है जो सिर्फ इस वजह से फकीर है, इस वजह से तंगदस्त है, ये मांग नहीं रहे कि वो इल्म हासिल कर रहे हैं। ला यस्ततियो ना दरबन फिर अर्थ, उनके पास इस्तात नहीं है कि वो दरबन फिर अर्थ के चले फिरे जमीन में। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जाहिर है अगर कोई तिजारत करेंगे, कोई ट्रेडिंग, बिजनेस, जॉब, तो जाना आना पड़ेगा, कहीं घूमना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वो इसकी इस्तात नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसलिए कि वो इसमें बिजी है ना। यहसबुहुम अलजाहिलु अग्निया, समझता है जाहिल, जाहिल से मतलब यहां पे कौन है जो ना वाकिफ है, जिसको पता ही नहीं है, समझ नहीं है, वो उनको अग्निया समझता है, मालदार समझता है। क्यों? मिन ताफुफ, मैंने आपको बताया मिन यहाँ पे किस लिए, तालील के लिए, वजह बयान करने के लिए। किस वजह से? ताफुफ की वजह से। ताफुफ का माना क्या है यहाँ पे? यानी ये कि वो किसी से मांगते नहीं है, ये वो किसी के आगे अपनी मोहताजी को नहीं रखते। इफ़त, तफाउल, बाब तफाउल से है ना, जिसमें तकल्लुफ भी होता है, कि कोशिश के साथ वो बचते हैं, सवाल ना करें। तो फिर कैसे पता चले उनका? तारिफ हूं भी सीमा हूं, तुम पहचान लोगे उनको उनकी निशानियों से। वरना ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट लिपट के नहीं मांगते कि जैसे फकीर लोग होते हैं, वो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि जान ही नहीं छोड़ते। या कुछ और लोग होते हैं, फिर बार बार फोन करेंगे, बार बार रिमाइंड कराएंगे, बार बार टेक्स्ट करेंगे, और पीछे पड़ जाते, तो वो ऐसे भी नहीं करते। अमान तो उनफिकु मिन खैरिन फ इन्नल्लाह भी अलीम, जो भी तुम खर्च करते हो ना, खैर में से, माल में से, रिज़्क़ के हलाल में से, अल्लाह ताला इसको खूब बखूबी जानता है। तो अब यहाँ पे बता दिया गया तुम्हारे सदकात किन लोगों के लिए जो रोके गए हैं। तो ऐसे फुकरा हैं जो दौड़ धूप नहीं कर सकते जमीन में, यानी वो पढ़ने पढ़ाने में इतने मशगूल हैं, अपनी माश कमाने का उनके पास टाइम ही नहीं है। देखे ना, अब ऐसे लोगों की अगर कोई नहीं मदद करता, और वो भी उठ के चल पड़ते हैं जॉबे करने के लिए, तो उन्होंने बेड़ा उठा रखा है कई लोगों का, कि उनके दीन, ईमान की का दीन उनको पहुंचाना, दीन के मसाइल उन तक पहुंचाना, और उनकी खैर ख्वाही, आखरत की बात उनको बताना, और जितने और मसले मसाइल हैं उनकी पूरी समझ लेके लोगों के मसले हल हल करना, ये सारे उनके काम है, उन्होंने इसका बेड़ा उठा रखा है। अगर वो भी इसी तरह कमाईयां करने में मसरूफ हो जाएं जैसे दूसरे लोग हैं, तो बताएं ये काम कौन करेगा? कुछ सोचें। कुछ लोग अपने आप को जब तक डेडिकेट ना कर दें, और उन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर अपने आप को डेडिकेट किया हुआ अल्लाह के रास्ते में, खालिसतन उसके लिए, फी सबीलिल्लाह, तो फिर बताएं कि अगर ऐसे लोग ना हों तो दीन कैसे आगे पहुंचे? हमें मसलों मसाइल का हल कौन बताए? इन लोगों का ख्याल करने की जरूरत है। ये सफेद पोश होते हैं इसी वजह से कि ये किसी से मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते, किसी को अपनी हालत से दिखाते नहीं है, चिमट नहीं जाते लोगों से मांग मांग के, तो लोग समझते हैं अच्छे भले ही, तो क्या है, हमने तो देखा है कोई ऐसा नहीं है, चल ही रहा होगा इसका गुजारा। लेकिन तारिफ हूँ भी सीमा हूँ, तुम पहचान लोगे उनको उनकी निशानियों से। ये जरूरी नहीं कि कोई हाथ ही फैलाए, असल बात ये कि आप किसी को हाथ फैलाने की नौबत क्यों आने दें? आप समझदार बंदा वो है कि वो देखे, समझ जाए कि ये बंदा जरूरतमंद है। इस्लाम ने उनको तो सिखाया लेने वालों को कि तुमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, तुम कनात करो, लेकिन देने वाले को ये सिखाया गया तुम इंतजार ना करना इस बात का कि दूसरा मांगेगा ही, पहले तो वो अपनी हया शर्म खत्म करे, हाथ फैलाए, फिर तुम भी जरा अकड़ जाओ कि अच्छा मैं इसको दे रहा हूं, देखो ये मुझसे मांग रहा है, फलां वक्त में इसको जरूरत थी जी, इन्होंने मुझे फोन किया, तो तुम्हें भी जरा अकड़ आ जाए और तुम भी जरा ऊपर होके उसको दो, इसकी जरूरत नहीं। खुद ही देख लो ना, हमें खुद नहीं समझ आती। मसलन एक बंदा, एक आदमी है, वो अपना सोल ब्रेड अर्नर है घर पर का, मतलब एक बंदा है कमाने वाला, ठीक है। अब वो, उसके चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, आपको पता है महंगाई का दौर है, इसकी जरूरियात कैसे पूरी होती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इमाम की ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हैं, ये फलां काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस महंगाई के दौर में कितना की इनकी तनख्वाह हो जाती होगी। तो वो अब हम समझे ना इस चीज को कि देखो इसको देना चाहिए हमें, ये अपना वक्त लगा रहा है, ये इसी टाइम पे जाके कहीं जॉब कर सकता था मेरी तरह, लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसों के लिए इस एक बंदे ने अपनी जिंदगी लगा दी है, तो मैं इसके ऊपर खर्च करूं। अब ऐसे लोगों को देना, इसकी तरगीब दी जा रही है यहां पर। आप इस तरह देखते हैं कि एक औरत है, सिंगल मदर है, वो बेवा है या वैसे ही सिंगल मदर है, तो अब आपको पता है ये सिपारे पढ़ा रही है, बच्चों को कुरान पढ़ाती है, उससे वो अपनी गुजर औकात कर रही है। अब आप गिन गिन के उसको फीस देते हैं कि हाय इतनी फीस, अच्छा कुछ कंसेशन नहीं हो सकती, जबकि आपको पता है कि ये औरत यहीं से अपना घर चलाने वाली है, इसके साथ बच्चे हैं, इसके घर की जरूरियात हैं। अब जरूरी नहीं हमने कह के देना ये सदका है जी आपके लिए, आप उसको उसकी पे में ही थोड़ा ज्यादा इजाफा करके उसको दे दो कि इसकी और जरूरियात भी तो होंगी, ये वो पूरी कर ले। अल्लाह अकबर। लेकिन ऐसी वक्त के अंदर ना तो हमें पहचान आती है, जब तक हमारे सामने कोई हाथ ना फैला दे, वो खुद हम सेंस नहीं करते। लेकिन जब हिर्स होगी ना सदका करने की, तो आप ढूंढेंगे लोगों को कि मैं किसके ऊपर खर्च करूं, मैं कहाँ लगाऊं, और जब सेंस ही नहीं, जब शौक ही नहीं, और फिर सेंस भी वाकई नहीं आती। लेकिन याद रखें सूरह मुनाफिकून के एंड में है, अल्लाह ताला ने बताया कि एक बंदा है वो जब मरने लगता है तो फयकूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ए मेरे रब तूने मुझे इतनी मोहलत क्यों ना दे दी, कैफा सद्दक वकुम मिन सालिहीन, मैं सदका ही कर लेता और मैं नेकी हो जाता। देखिए वो मरते वक्त एक बंदे की ख्वाहिश अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बता दी, वो किस अमल की ख्वाहिश कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा मैं नमाज पढ़ लूं, मैं रोजा रख लूं, मैं जरा और भी तो कई चीजें हैं ना, हज कर लेता, मेरा हज पड़ा हुआ था, मैं उमरा कर लेता, कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है मैं सदका कर लेता। कैन यू इमेजिन के सदके के जो फवायद उस वक्त उसको पता चल रहे होंगे जिस वक्त वो अगली दुनिया में एंटर हो रहा है, कि ये कैसे सदका रास्ते खोलता चला जा रहा है। वो तमन्ना करेगा अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं इतनी मोहलत दे दी, जिंदगी खत्म हो गई, हाय काश मुझे थोड़ी इतनी जिंदगी मिल जाती, मैं सदका ही कर लेता। तो इसकी हिर्स रखें कि मैंने किसी के काम आना है, मैंने मदद करनी है, इसके लिए ढूंढे लोगों को। ये भी आसान होता है सदका बॉक्स में मस्जिद में जाके सदका डाल देना, ये भी आसान होता है कि किसी जगह पे डोनेशन में डोनेशन दे देना, लेकिन एक ढूंढ के किसी को फिर उसको उसके ऊपर सदका करना बहुत बड़ी नेकी है। अपने इर्द गिर्द देखना, याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है। आप किसी किस्म की किसी की मदद करें, हो सकता है किसी को पैसों की जरूरत हो, कुछ और जरूरत हो, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम, शायद उंगलियों पे गिने जा सकते हो, मैं तो ये कहूंगी। इतने लोगों को भी मैं जानती हूं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करें। आप उनको कहें, फिर उनको रिमाइंड कराएं, फिर उनको बार बार उनकी मिन्नतें करें, फिर जाके वो कोई काम करते हैं, खुद से नहीं। वो कहते कि अच्छा ये बात है तो कुछ समझ ही ले। जैसे नबी अलैहि सलातो वसलाम, असहाबे सुफा का ये वाक्य बताती हूँ कि आप अलैहि सलातो वसलाम के पास ये साहबा पढ़ते थे जो सुफा वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ही देखे इनको चबूतरा बना के दिया हुआ था, ये वहां पे बैठते थे, इसीलिए असहाबे सुफा कहलाते हैं ये, उस चबूतरे को सुफा कहते हैं। तो वहां पे ये पढ़ते थे, वहीं रहते थे, सोते थे। और जो भी कोई जाके वहां पे कोई खजूरें लटका देता था, जैसे हमने पहले बात की थी रद्दी माल ना दो किसी को, तो वो रद्दी भी कोई खजूरें लटका देता था और अच्छी खजूरें होती थी तो उनको वो खा लेते थे, उससे ही अपना पेट भर लेते थे, कभी कुछ भी नहीं होता होगा। तो अबू हुरैरा को एक दफा इतनी भूख लगी हुई थी, कुछ भी नहीं था। अब वो जो थे ना, सुभान अल्लाह, उनमें से है ना कि जो किसी से लिपट के मांगते नहीं है, हया की वजह से मांगने से बचते हैं वो, इसीलिए आप उनको पहचान भी नहीं पाते। तो वो जाते थे, लोग जो गुजर रहे सहाबा उनसे मसाइल पूछते थे। अच्छा, उनको आता होता था जवाब, लेकिन उनसे मसाइल पूछ रहे थे, किसी को शायद ये समझ आ जाए कि मुझे कितनी भूख है, कोई शायद पहचान ले, तो वो उनको जवाब देके आगे चले जाते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जिन्होंने पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और दूध का एक प्याला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ सारों को बुला लो। वो देख रहे हैं दूध के प्याले की तरफ आए, इतने लोग इनको बुला लाया तो ये एक प्याले से पियेंगे कैसे, ये तो एक के लिए भी नहीं काफी होगा, खुद को इतनी भूख लगी हुई है तो कैसे इंसान को लगता है कि मैं तो ये सारा ही खा लूंगा। अच्छा, वो बुला के ले आए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबको दूध का प्याला आगे करो, सब दूध पीते गए और पेट भर भर के दूध पिया, दूध ही नहीं खत्म हो रहा था। ये होती है बरकत। ये जो सारी हमने बातें पढ़ी है ना, सारी बातों की इस एक हदीस के अंदर आपको मिसाल मिल जाएगी। अब वो अगले को पकड़ाता तो दूध का प्याला वैसे ही भरा होता, हत्ता कि आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा आप पियो। कहते मैंने इतना पिया दूध कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नाखूनों से भी निकल आएगा, इतना दूध पिया, इतना पेट भर के पिया। और फिर भी प्याला उसी तरह भरा हुआ था। इसको बरकत कहते हैं। हम कहते हैं ना बरकत क्या होती है, बरकत पैसों को गिन के उनका नंबर नहीं होती कि मेरे पास 1,000 है या लाख है या 1,25 लाख है। बरकत ऐसी चीज है कि उसको वो आपको सामने दिखाई नहीं देगी कि ये बरकत पड़ी भी इसको डाल दूं पैसों के अंदर, मगर वो आपको अपने मामलात में पता चलने लगेगी, चाहे वो जिंदगी में बरकत हो, चाहे वो अमल में बरकत हो, चाहे वो घर बार में बरकत हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो खाने में हो। तो सुभान अल्लाह, इतनी बरकत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा था ये। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया उनको कि इनको भूख लगी हुई है, और देखिए उन्होंने मांगा नहीं। ऐसे लोग मांगने से शर्माते हैं, क्या किसी को कहें, और किसी को चिमट चिमट के भी नहीं मांगते। तो इनकी मदद करना, इनको देना, खास तौर पे जिन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई हो दीन के लिए, वो कमाइयाँ चाहते तो वो भी करने लग जाते, वो चाहते तो वो भी अपना कोई बिजनेस कर लेते, वो चाहते तो अभी वो भी नौकरियां कर लेते, लेकिन वो नहीं कर रहे। उन पे खर्च करना बेहतरीन सदका है, क्योंकि इनका जिक्र खास तौर पे कुरान में देखें, पूरी आयत इनके ऊपर आ गई है, पूरी आयत इन पे है। अल्लाह अकबर। और मिस्कीन भी इसी में आता है। फकीर का मतलब यहाँ पे नहीं कि वो आपसे मांग रहा है, कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वो मांगता नहीं है, ऐसे भी फकारा होते हैं। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, सलाम को आम करो और नमाज पढ़ो, जब सब लोग सो रहे हो तो जन्नत में सलामती से चले जाओगे। तो खाना खिलाएं इनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, देखो तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं, तामकुल अबरार, नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं। ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि नेकों को खाने की दावत दें हम। सल्लल्लाहु मलाइका तुम्हारे पर, फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआएं करें। ये दुआ है ना जो आप दें रोजा जो आपको इफ्तार कराए उसको। तो हम देखें कि हम जैसे रोज खाते हैं पीते हैं और अपने काम करते हैं, इसी तरह रोज सदका भी करें, क्योंकि इसके समरात आज शायद हमें ना समझ आए, लेकिन कल कयामत के दिन जब लोग अपने सदके की शेड में खड़े होंगे, जब बहुत सख्त धूप होगी, सूरज करीब होगा, गर्मी इतनी होगी, सदका शेड होगा, और ये अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देता है, ये कब्र की गर्मी को दूर कर देता है। कौन सा एसी है जो कब्र के लिए है? इसको समझे मैंने अपना एसी कब्र के लिए, अपनी ठंडक, अपनी कूलिंग चिलर अपना कब्र का खरीदना है ये पैसे दे के। ये मैं किसी को दे नहीं रही पैसे, ये तो मैं अपने लिए खरीद रही हूँ। देखो, जब अपने लिए आप कोई चीज करते हैं ना, तो उसमें जरा भी नहीं आपको तरद्दुद होता। मसलन घर के लिए आपने अच्छा फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, पंखे खरीदे, आपको जरा भी मुश्किल नहीं हो खर्च करने में। तो ये मेरे इस घर का एसी है, लेकिन मेरे उस घर का भी तो एसी चाहिए, चिलर्स चाहिए, वहां पे तो कोई एसी नहीं है। तो ये उसकी गर्मी को दूर करता है कब्र की। अल्लाह अकबर, किस किस ने अपनी कब्र में गर्मी दूर करनी है? या हमसे तो यहाँ की गर्मी सही नहीं जाती, जमीन के नीचे क्या हाल होगा? और एक वक्त आ जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने सदके को कंधे पे उठा के पूरा दिन चक्कर लगाता रहेगा, उसको सदका लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिसको देना चाहेगा वो कहेगा मुझे नहीं अब जरूरत, अगर कल आते तो मैं ले लेता। सुभान अल्लाह। इसलिए उस दिन से पहले सदका करें, और उस दिन से पहले सदका करें जब हम दुनिया से रवाना हो रहे हो और उसका वक्त हमें पता नहीं। तो यतीमों के साथ उसने सलूक करें, मिस्कीन को खाना खिलाएं, किसी गर्दन को आजाद कर दें, सला रहमी करें, रिश्तेदारों से उसने सलूक पे खर्च करें, रिश्तेदारों पे खर्च करें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही नाजिल हुई थी तो हजरत खदीजा ने यही बताया था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था, कभी किसी को ना लौटाते नहीं थे, जो आपके पास होता था दे देते थे। अब एक औरत आई और उसने कुछ मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त कुछ नहीं था, आप माले गनीमत सारा मतलब बांट दिया, तकसीम कर दिया था। आपने फरमाया अगले साल आना, तो कहने लगी अगर आप ना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला साथ बैठे थे उनकी तरफ इशारा करके, तो आप इनसे मांग लेना। और आपको पता है सदके की वजह से गुनाह भी तो धुलते हैं, हमने पहले पढ़ा है ना, सय्यात आपकी अल्लाह ताला दूर कर देता है। तो अब हम ऐसे लोगों को कैसे ढूंढें, ऐसे लोगों को कैसे तलाश करें? तारीफ हम भी सीमा हो, बस आप उनकी निशानियों से समझ जाएं। जरूरी नहीं उन्होंने फटे हुए कपड़े पहना है तो तभी आपने देखना, मैंने जैसे आपको बताया कि खुद भी कुछ समझ लिया करें ना हम, भाई कैसे इनका गुजारा होता होगा। और इन्होंने हमारे लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ। और यहाँ से हमें ये भी पता चला, ये नहीं कहा गया कि ना मांगना कोई बुरी बात है, उनको तो मांगना चाहिए और उनको कहना चाहिए। नहीं, इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी से ना मांगे हम, खास तौर पे किसी के पीछे तो बिल्कुल ही ना पड़ जाए, ठीक है। हमें ये भी पता चलता है हदीस से कि जो भी सवाल करता है जबकि उसको जरूरत नहीं होती, बिला जरूरत सवाल करता रहता है, तो कयामत के दिन जब वो आएगा ना, तो उसके चेहरे पे गोश्त का कोई टुकड़ा भी नहीं होगा, सारा चेहरे के ऊपर से गोश्त ही खत्म हो गया होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास उस दिन का खाना मौजूद है ना, फिर भी वो मांगता है तो वो जरूरतमंद नहीं है, ठीक है, कोई मांग सकता है। अब देखिए, खाने पीने के अलावा भी इंसान की जरूरत है, लिबास भी है, रहाइश भी है, तालीम भी है, इलाज कराना भी है, कई चीजें हैं। तो लेकिन मांगे नहीं, दूसरे को खुद ही देखना चाहिए कि इसकी ये सारी जरूरियात हैं। अच्छा, अब क्या, मांगने से तो मना कर दिया गया, तो फिर कोई क्या करे अगर उसको कोई जरूरत पड़ जाए? तो फिर उसको आगे आएगी बात कर्जे की, वो भी फिर हमें आगे बताया गया कि फिर वो कैसे कर्ज ले और कर्ज देने वाले को फिर क्या चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है। अच्छा, अल्लादीना युनफिकुन अमवालहुम बिललैली वन्नहारि सिर्रन वालानियतन फलहुम अजरुहुम मिंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं ना रात को, दिन को छुपा के, एलानिया, आप देखिए रात पहले जिक्र आई, दिन बाद में आया, सिर का पहले जिक्र आया, ऐलान का बाद में आया। इससे हमें पता चलता है कि छुपा के सदका करना ज्यादा फजीलत रखता है।
छुपा के, रात होती है ना तो वो इंसान को छुपने की एक का टाइम होता है, और खुफिया सदका में तो वैसे ही छुपना है। तो वो जो ऐसा करते हैं, और इससे हमें ये भी पता चला कि दिन रात सदका करते हैं, यानी 24 घंटे इसमें आ गए, जिस वक्त किसी को देखा उसी वक्त उसको लिए हेल्प के लिए खड़े होकर, और छुपा के भी करते हैं। ऐलानिया कब करा जाता है? जब दूसरों को तरगीब देनी हो कि वो भी खर्च करें, तब ऐलानिया आप दे सकते हैं। तो इनका अजर अल्लाह ताला के पास है, इनका अजर व सवाब अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया, उनके ऊपर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी दाऊद की रिवायत है, जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़े की जरूरत पूरी करता है, कपड़े पहनाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत का सब्ज लिबास पहनाएगा। जो किसी मुसलमान को खाना खिलाएगा जब वो भूखा हो, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के फलों में से फल खिलाएगा। इस वक्त दुनिया में कितना फैमिन है, कितनी जगह हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं इतनी भूख है, और हम देखते भी हैं उनके हालात कि किस कदर स्केलेटन बने हुए बच्चे। तो फिर सोचा करें कि इनको मैं खिलाऊंगी ना, अल्लाह ताला मुझे जन्नत के फल खिलाएगा, जन्नत मेरी मेरी दावत होगी। मुझे कपड़ों का शौक है ना, मैं यहाँ पे कपड़े बनाती रहती हूँ, तो मेरा दिल करता है जन्नत के कपड़े कितने खूबसूरत होंगे, अल्लाह ताला मुझे वहां के कपड़े देना। कैसे मिल सकते हैं? आपको तरीका तो बता दिया गया, आप किसी को कपड़े लेके दे दें, सिर्फ ईद का इंतजार ना करें, कपड़े लेके दे दें किसी को, कपड़ों का तोहफा दे दें किसी को। जरूरी भी नहीं होता कि आपने सदका खैरात कह के ही देना होता है, ये खैरात है ये सदका है जी, आप बस को तोहफा दें और ये सोचें कि ये सदका है। कोई भी गरीब है, कभी कभी हमारे पास क्रिश्चियन मेड्स काम कर रही होती हैं, तो सदका करने में किसी पे भी कोई हर्ज नहीं। अब वो पता है ना, ये जरूरतमंद है आप, लेकिन हम वो ही देते हैं फिर जो कि इतना यानी फटा हुआ होता है कि, और इतना खराब हालत में हो चुका होता है कि दूसरे को भी शायद 2 दिन ही पहनना नसीब हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए नेकी का कितना वसी हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है, वो लुकमा जो अपनी बीवी के मुंह में तुम डालते हो वो भी सदका है। यानी जो इंसान अपने बीवी बच्चों पे भी खर्च करता है ना, उनकी जरूरियात पूरी करता है, और ये सोच के पूरी करता है कि अल्लाह ताला ने इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है, मैंने इनकी जरूरियात पूरी करनी है। हाँ, इसराफ ना करे। अब बीवी ने कह दिया कि मुझे 1.25 लाख का जोड़ा चाहिए, तो वो ही देना ला के। बच्चे ने कह दिया कि मेरी शादी क्यों आपने फलां होटल में ही करनी है, तो हम वो करने खड़े हो जाएं जी, बच्चों की जरूरियात पूरी करें। नहीं, इतदाल में रह के आप जो जरूरियात पूरी करते हैं वो भी आपके नामाए आमाल में सदका लिखा जाता है। तो बाज लोग क्या करते हैं, अपने घर पे खर्च करना नहीं, लेकिन इधर उधर लुटाए जा रहे हैं कि वहां पे लोग हमारी तारीफें करेंगे, घर वालों को क्या होगा, बीवी को एक पैसा भी नहीं देते। अब वो बेचारी हर वक्त देखती रहती है कि किस किस वक्त मुझे भी कुछ पैसे दिए जाए, और उनके ऊपर खर्च तंग किया होता है। तो ये भी नहीं करना चाहिए, इसको समझना चाहिए ये भी सदका है। इसी तरह एक और हदीस में आता है, जो शख्स किसी भूखे मोमिन को सैर होके खिलाएगा, यानी उसका पेट भरा के उसको खिलाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में ऐसे दरवाजे से दाखिल करेगा जहां से सिर्फ ऐसे ही जाएंगे जो लोगों को भूख मिटाने वाले होते थे। अल्लाह हू अकबर। तो इतना अजर है, और इसमें फिक्र ना करें कि कहीं किसी को भूल जाएगा, मामा तो कद्दीमुली अनफिसकुम मिन खैरिन तजिदुहु इंदल्लाह। जो भी तुम नेकी करोगे ना, चाहे आप सदके की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे आप खाना खिला के किसी को ये सदका कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े पहना के किसी को सदका कर रहे हैं, चाहे आप किसी की जरूरत पूरी करके और कर रहे हैं, किसी को दवाई लेकर दे रहे हैं, किसी के साथ भाग दौड़ कर रहे हैं, जो भी तुम खैर का काम करोगे अल्लाह ताला के पास इसको पाओगे। जैसे हमें पता चलता है कि एक आदमी अल्लाह ताला के हाँ पेश होता है, और वो कहता है कि उसके पास कोई नेकी नहीं होती, वो कहता है कि उसके पास बुराइयां ही बुराइयां, अल्लाह ताला उससे पूछते हैं तुम्हारे पास कोई नेकी है? कोई नेकी भी नहीं होती, ऐसे एक ही नेकी होती है अल्लाह ताला, लोग मेरे पास खोटे सिक्के भी ले आते थे ना, तो मैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेता था, मैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेता था कि जो इसके पास नहीं होगा कोई चीज तो उसका खोटा भी मैं एक्सेप्ट कर लेता था। तो तू मेरे खोटे अमाल ही एक्सेप्ट कर ले अल्लाह ताला, उसके वो जैसे तैसा भी लेकर आया होगा अमल, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा और उसको माफ कर देगा कि तू मेरे बंदों के साथ ये करने वाला था, इतनी आसानी अल्लाह ताला उसको इस पे ही बख्श देगा। जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, हमारा दीन हमदर्दी का, खैरख्वाही का, लोगों के साथ भला करने का दीन है, लोगों के साथ अच्छाई करने का दीन है, गम गुसारी का दीन है। इसके अंदर जिस किस्म की भी नेकी कर सके वो कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बेहतरीन मुसलमान वो है जो लोगों के लिए नफा मान दो, लोगों को नफा पहुंचाने वाले बन जाए। अब एक बंदा है, उसकी जरूरत ऐसी है कि बहुत बड़ी जरूरत है, उसको अब अपनी जरूरत के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज लेना, इसमें कोई ममानियत नहीं है, कर्ज लिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त जरूर है, एक चीज है जो कर्ज को खराब कर देती है, और वो क्या है? सूद। अब यहां पे सूद की हुरमत के ऊपर बात आई है। आप देखें, सूद के बारे में भी उसी तरह बतदरीज हुरमत की बात आई जैसे शराब के बारे में आई। पहले सूरह रूम आयत नंबर 39 उतरी, वमा उती वमा आते ही तुम मिन रिबन लियरबू फिर अमवाल नासी फला यरबू अंदल्ला। जो भी तुम माल देते हो, आता ही तुम मेर रिबन, जो रिबा, ये ताकि वो लियर बुआ फी अमवाले नास, ताकि वो बढ़ जाए लोगों के मालों में जाके, तो वो अल्लाह के यहाँ बढ़ता नहीं है। तो पहले तो ये बता दिया गया कि ये बढ़ता नहीं है, जो तुम जकात में से अल्लाह के रास्ते में दोगे वो बढ़ता है, ये नहीं बढ़ेगा। तो एक तरह से पहले उसकी कराहत, नापसंदीदगी का इजहार कर दिया गया। फिर उसके बाद आयत नाजिल हुई जिसके अंदर ये बता दिया गया कि यहूद के जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर कई पाक चीजें हराम कर दी, और इसलिए कि वो लोगों को रोकते थे अल्लाह के रास्ते से बकसरत। तो ये एक जुल्म बताया गया कि वह अखजीहुमुर रिबा, वो रिबा लेते थे, वह कदनू अन, और उनको मना किया गया था इससे, अक्लिहिम अमवाल नासी बिल बातिल, लोगों का माल बातिल तरीके से खाते थे। तो ये एक सूरह निसा आयत 161 है ये, जिसमें बता दिया गया कि यहूदियों ने क्या किया, वो सूद लेते थे और सूद उनको मना किया गया था। फिर उसके बाद जब यहूदियों का भी बता दिया गया, फिर सूरह आले इमरान 130, या यलदीना मनुला तकुल रिबा दाफा मुदाफा, ए ईमान वालो ना तुम खाओ सूद बढ़ा चढ़ा के, ये आयत आई। और अभी सूद पूरी तरह हराम नहीं हुआ था, और इसकी देखें कराहत और इसकी मतलब नापसंदीदगी बताई गई थी, और कई लोगों ने इसको छोड़ भी दिया हुआ था इसी वजह से। लेकिन अब जाके सूरह बकरा में इस जगह पर साफ फिर हराम कर दिया गया सूद को, इसके बाद कोई भी सूदी लेन देन जायज नहीं है। अल्लदीना याकुलून रिबा, वो लोग जो खाते हैं सूद, खाते हैं सूद मतलब क्या, लेते हैं सूद, जैसे कहते हैं ना उसके पैसे खा लिए, मतलब ले लिए। अब सदके के मुकाबले में सूद है, सदके में तो किसी का चूल्हा जलता है, सूद में किसी का चूल्हा बुझा दिया जाता है। ला यकूमुना इल्ला कमा यकूमुल लदी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, वो नहीं खड़े होंगे मगर उस शख्स की तरह जिसको खबती बना दिया उस शैतान ने छू के। ये किसके बारे में है? ये जब वो कब्र से खड़े होंगे,
कब्रों से निकलेंगे, ये हदीस में आता है, ये उस वक्त की बात है कि वो ऐसे होंगे, बावले हुए जाएंगे, जैसे कि शैतान ने छू के उनको पागल बना दिया। इससे पता चलता है कि वाकई शैतान जहां पे इंसान को वसवास डालता है वहां पे उसको फिजिकली भी हर्ट करता है, और बाज दफा ऐसी बीमारियां या ऐसे जो दीवानापन पागलपन जो है वो शैतान की तरफ से भी होता है। तो यहां से हमें एक ये बात पता चली कि रिबा खाने वाला, उसके लिए इतनी बड़ी वईद है कि वो जब उठेगा भी तो वो एक तो पागल वो होता है ना कि जो बिल्कुल खामोश होके बैठ जाता है और उसको जो कुछ होश नहीं होता क्या हो रहा है उसके गिर्द, और बस वो अपनी धुन के अंदर होता है, और एक पागल होता है जो बावला पागलों की तरह इधर भाग रहा है, कुछ बोल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल दीवाना वार हुआ पड़ा है। उस तरह वो लोग होंगे कि कयामत के दिन, कि यानी शैतान इतना ऐसा जैसा किसी को कर देता है, दुनिया में खपती बना देता है, उस तरह वो लोग होंगे। अच्छा, तो अब हमें क्या चाहिए? अमल की एक बात कि इंसान को चाहिए कि दुनिया में भी जो पता चला कि शैतान इस तरह से खपती बना देता है तो उसके हमलों से बचने के लिए हिफाजत की दुआएं पढ़ें, रात को जो सोने के अजकार हैं उनकी पाबंदी करें, टॉयलेट में जाने के अजकार पढ़ें, घर में दाखिल होने और घर में से निकलने की जो दुआएं हैं वो जरूर पढ़ें, तो आखरत में वो ऐसा हो जाएगा। ये क्यों क्यों उसकी ये सजा है? दालिका, ये इसलिए है भी अन्ना हो बवजह इसके कि बेशक वो कौन, वो ये जो रिबा खाते थे, कालू वो कहते थे, कहते हैं इन्नमर बैउ मिस्लु रिबा, वो रिबा बै जो है यानी तिजारत जो है वो भी तो रिबा ही है, यानी तिजारत जो है वो उसको कहते थे कि देखें तिजारत में भी तो ऐसा ही है ना कि हम इधर से 10 रुपए की चीज ली और आगे 50 की बेच दी तो हमने उसमें भी तो प्रॉफिट कमाया, तो ये भी इसी तरह ही है रिबा भी, हम किसी को कर्ज देते हैं और उसके बाद आज 10 दिया तो कल को उससे 50 ले लिया, तो ये भी फिर वही चीज तो है, उसमें क्या फर्क हो गया? तो ये कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई जिसे आप कह रहे हैं कि जो है ये हराम है और ये मना है? तो यहां हमें एक तो पहले पता चलता है कि रिबा की डेफिनेशन क्या है। रिबा हर वो कर्ज जो अपने साथ नफा खींच लाए उसको रिबा कहते हैं, हर वो कर्ज जो अपने साथ नफा खींच लाए, आपने किसी को कर्ज दिया है वापसी के ऊपर उसके साथ नफा आ गया है तो वो हराम है। और अब यहाँ पे जो उनकी बात, उन्होंने ये नहीं किया कहा कि रिबा भी बई की तरह है, बल्कि उन्होंने कहा बई रिबा की तरह, तिजारत भी तो यही है, तो क्या हुआ? जैसे आज लोग कहते हैं बैंक से लेना या इस्लामिक फाइनेंसिंग कराना, एक ही तो बात है ना, कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो। तो वो कहते थे कि कान यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, तिजारत भी तो सूद ही है, तो फिर तो तिजारत जब ठीक है तो फिर रिबा भी ठीक है। जबकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने हलाल किया है तिजारत को और हराम किया सूद को, इतनी बड़ी बात है, क्या यही काफी नहीं है? क्या यही काफी नहीं है? अब ये देखें, ये जो आयात है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में नाजिल हुई थी। बाज जगह आता है 4 महीने तकरीबन 4 महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के, बाद ने और भी इसे कम टाइम बताया। ये रुकू जो है, बल्कि ये जो पूरा रुकू शुरू हुआ है 274 आयत से, ये रुकू ही तकरीबन 9 हिजरी में नाजिल हुआ है। अब देखें ये सूरत ये हिजरत के फौरन बाद नाजिल होने शुरू हुई थी, बदर से पहले तक नाजिल हुई सिवाय 2 आयात की, एक तो ये सूद की जो आखिरी आयात है और जो आखिरी 2 आयात है सूरह मुबारका की। तो सूद क्या चीज है, इतनी इसकी हुरमत बिल्कुल यानी एक एंड में आई है,
और सूद क्या चीज है, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि जो भी तुम सूद सूद के ऊपर चीज करते हो वो हराम है, और जो तिजारत है वो अल्लाह ताला ने हलाल की है, यही फर्क है। तुम कहते हो वो दोनों सेम है। और इससे हमें पता चला कि ये हराम होने वाली चीजों में सबसे आखिरी चीज थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम सूद लेते तो नहीं है, देते हैं, तो क्या सूद देना जायज है? आप जावेद गांधी जैसे लोग कहते हैं कि देना सही है, इसलिए कि वो सिर्फ कुरान को देखते हैं, हदीस को इग्नोर कर देते हैं। और दीन इस्लाम बगैर हदीस के मुकम्मल है ही नहीं। कुरान को समझना है तो बगैर हदीस को समझे हुए, बगैर हदीस को लाए हुए आप कुरान को समझ ही नहीं सकते। और कुरान ही कहता है वमा आताकुम रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अनहु फंतहू, जो रसूल आपको दे वो ले लो, जिसे मना करे रुक जाओ। तो हदीस को ना मानना कुरान को ना मानना, तो उसमें क्या आया? हदीस में मुस्लिम की है कि सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, इसकी गवाही देने वाले पर, इसको लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की रहमत से दूर है। और जो हीले बहाने करके सूद को हलाल करते हैं, तो सही हदीस में है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों पर लानत इसीलिए तो की थी कि जब उन पर चर्बी हराम हो गई थी तो उन्होंने बहाने करके हलाल बनाने की कोशिश की, वो जब चर्बी को पिघला के, तो कहते हैं अब यूज हो सकती, अब इसको बेच सकते हैं। तो ऐसी कोशिश करना भी हराम है और ये भी बाइस लानत है। सूद की हुरमत के ऊपर जो अहादीस हैं, बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें शदीद वईद है, तो हमें आज यही देखना है कि एक तो सूद क्या चीज है, किन किन मामलात को शामिल है, और इसकी हुरमत क्या है, और इसकी सजा क्या है। और यहां पर देखें, सूद खोर का अंजाम बता दिया गया कि मैशर में उसकी रुसवाई कैसे होगी और किस तरह वो बंदा खड़ा होगा, जैसे कि वो उसको कुछ पता नहीं है, बावला हुआ जा रहा है, पागलपन का दौरा जिसको पड़ जाता है। अभी किसी को जहरीला कुत्ता काट दे तो देखिए वो फिर कैसा हो जाता है, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। तो और इनके हीला बहाना इस तरह से करना कि लो ये तो ऐसे, ये इनको आर्ग्यूमेंट था ना, ये इनका आर्ग्यूमेंट था, इसको रद्द कर दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने बे को हलाल किया, यानी तिजारत को, और हराम किया है इसको। फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फन्तहा, जिसके पास अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत आ गई फिर वो बाज आ गया, रुक जाए फिर वो रुक जाए, फलहु मा सलफ, तो उसके लिए जो पीछे गुजर गया, यानी फिर जो गुजर गया तो फिर उसकी तो नहीं, उसके ऊपर पूछ होगी, फिर वो तौबा इस्तगफार करे, जिसके पास आज आ गई नसीहत और वो आज ही रुक गया, तो जो गुजर गया वो गुजर गया, वह अमरहु इलाल्लाह, फिर अल्लाह ताला के पास है उसका मामला, उसको चाहे माफ करे चाहे ना माफ करे, उसकी तौबा कबूल करे ना कबूल करे, जो भी करे। और मन आदा, और जो कोई लौटे, जो कोई फिर से यही काम करे, उलाइका असहाबुन्नारि हुम फीहा खालिदून, तो वो हमेशा जहन्नुम में रहने वाले, हमेशा हमेशा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो सूद खाने का मतलब है सूद को, इस सूदी पैसे को इस्तेमाल करना, चाहे किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप पहनने के लिए या घर लेने के लिए या कारोबार के लिए या किसी चीज के लिए, और इसकी सजा कितनी ज्यादा है। ये जो पहले वाले लोग हैं, ये वो हैं जिन्होंने दो जुर्म किए हैं, एक तो हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, दूसरे इसको हलाल भी समझ रहे हैं और कह रहे हैं नहीं ये भी तो तिजारत की तरह ही है, तिजारत भी इसकी तरह है। और अगर सूद हराम है तो फिर तो तिजारत भी हराम ही होनी चाहिए ना, यानी उनके आर्ग्यूमेंट कितने हैं, आपने देखा है लोगों को बहसें करते हुए इसके लिए। तीसरे आप ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने वाजे तौर पे फरमा दिया, हर अमर रिबा हराम कर दिया अल्लाह ताला ने रिबा को, फिर ये तिजारत के इक्वल कैसे हो सकती है? उन्होंने तो कहा था ना दोनों में नफा ही आ रहा है ना, अल्लाह ताला ने बता दिया उनको, इतना ही काफी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। अब अगली जुमले में क्या बात है, सूद हराम होने से पहले जिसने कोई रकम जमा कर ली थी, अब वो सूद उसके ऊपर, उसको उसने कर्ज पे दे दी थी, उसको सूद उस पे मिल रहा था, अब जो हो चुका वो हो चुका, अब तौबा कर ली जाए। अगर दिल से तौबा की होगी तो अल्लाह ताला को पता है, और अगर कुछ ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से इस्तगफार इस्तगफार करके और लोगों के सामने तो कर ली और अंदर से वो ही शुरू रहे, तो भी अमरुहू इलाल्लाह, उसका मामला अल्लाह के ऊपर है। ये बता के हमें बता दिया गया कि सूद की हुरमत कितनी, और आप इसके लिखें कि एक तरफ लिखें तिजारत और एक तरफ लिखें सूद, और फिर देखें दोनों की किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे इसका फायदा और कैसे उसका नुकसान। तिजारत पे जो आप लगाएंगे वो तो नफा है ना, सूद पे जो सूद के जरिए जो आपको आएगा वो नफा नहीं है, उसको चाहे प्रॉफिट का नाम दे दें वो हराम है। तिजारत से लगाए गए माल में बरकत है, सूद को अल्लाह मिटाता है आगे आएगा। और जो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया उसमें कभी हमारा फायदा नहीं हो सकता। अब देखें जो वो बात कह रहे हैं ऐसे ही है, कोई कहे कि जिना और शादी में क्या फर्क है, दोनों में काम तो सेम ही है, कोई काम का तो फर्क नहीं है, तो क्या फर्क है, एक है जिना और एक है शादी, ताल्लुक जो कायम होता है उसके बाद उसमें क्या फर्क रह गया, एक को अल्लाह ताला ने हराम किया दूसरे को हलाल किया, ये सबसे बड़ा फर्क है। तो सूद की क्या शक्लें होती हैं, आप किसी की मजबूरी से फायदा उठाते हैं जब कर्ज देकर और उसके वो सूद समेत वापस लेते हैं, इसीलिए ये मना किया गया है। इससे लोगों के दरमियान एक दूसरे के लिए हमदर्दी के नहीं बल्कि एक दूसरे से अदावत और एक दूसरे के साथ अच्छे जज्बात नहीं रहते। जैसे मसलन किसी को 1 लाख दिया, वापस लेते वक्त 1,10,000 ले लिया, ये 10,000 सूद है, या किसी को कर्ज दिया उसके बदले उसकी जमीन प्लेज कर ली, गिरवी रख ली और उस जमीन से अब फायदा उठा रहे हैं, तो ये सूद है। हाँ अगर उस जमीन से फायदा उठा रहे हैं लेकिन उसका किराया दे रहे हैं तो फिर नहीं है, मतलब उसका मकान गिरवी रखा हुआ है अब उसमें रहना शुरू कर दे किसी ने, लेकिन साथ साथ उसको कह रहे हैं कि हम कर्ज में से काटते जाएंगे, तो ये सूद नहीं है। और एक दफा बुखारी रिवायत करते हैं कि अबू बुरदा से, जो अबू मूसा शरी के बेटे हैं, वो कहते हैं वो मदीना आए इराक से, तो अब्दुल्ला बिन सलाम से मिले, अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया ध्यान रखना तुम जिस इलाके में रहते हो वहां सूद आम है, उससे बच के रखना रहना, जब तुम किसी को भी कर्ज दिया करो और वो तुम्हें तोहफे के तौर पे भी कोई चीज दे दे, तो जैसे मसलन एक जौ की बोरी दे दे, एक गंदम की बोरी दे, तो वो भी मत लेना, वो सूद होगा। यानी किसी को कर्जा दिया हुआ और उससे आप किसी किस्म का फायदा भी नहीं उठा सकते, इवन हमारे असलाफ इतनी ज्यादा इस चीज के अंदर एहतियात करते थे कि वो किसी बंदे की दीवार के साए में भी नहीं बैठते थे जिसको उन्होंने कर्ज दिया होता था, कि ये ना हो कि मैंने कर्ज दिया हुआ है तो ये सूद में आ जाए, मैं इसकी दीवार से भी फायदा उठा लूं, तो इल्ला ये कि पहले से आपके ताल्लुक आते हैं, मसलन बहन भाइयों ने एक दूसरे को दिए मैं, तो इससे पहले भी वो एक दूसरे को तोहफे तहफे देते थे, एक दूसरे के घर खाते आते जाते, खाते पीते थे, सब ताल्लुकात थे, तो फिर ठीक है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसको आपने कर्ज दिया हुआ, उसके बाद उससे फायदा उठाना। मिसाल के तौर पे आपने अपनी मेड को कर्जे के ऊपर कुछ दे दिया, अब आप उसको कहती हैं जरा सा ये भी जरा सा मेरा काम कर जाना, अच्छा ये भी जरा मेरे सर में तेल डाल जाना, अच्छा आज ये भी काम कर लो क्योंकि मैंने इसको कर्ज दिया हुआ। तनख्वाह तो देती हूँ लेकिन कर्ज भी तो मैंने इसको दिया है ना, तो क्या हो गया अगर हमने फायदा उठा लिया? ये जुर्म है, ये सूद है, ये सूद की एक शक्ल है। इसी तरह सूद की एक और शक्ल है सोने की बैग, आप करें तो सोने के साथ ही करेंगे उतनी ही मिकदार में। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज आप इसको समझ लें सही 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 तरीके से, प्लीज मुझे ना क्वेश्चन भेजा करें क्योंकि मैं अच्छी तरह समझा चुकी होती। शरीयत कहती है दोनों तरफ से मिकदार एक जितनी होनी चाहिए, और एक हाथ से दें और एक हाथ से लें। कैसे? अब मिसाल से समझें, 4 तोले सोना आपने दिया है ज्वेलर को, तो इसके बदले में वो 4.25 तोले नहीं आपको देगा, वो 4 तोले की चीज देगा, सोने के बदले उतना ही सोना। या वो आपसे आपने 4 तोले की चीज लेनी है तो वो आपसे 4.25 तोले की चीज लेके और फिर वो 4 तोले की चीज नहीं देगा ज्वेलर, यानी वो कम करके। अक्सर ही ऐसा होता है ना कि आपने जो दिया उसके बाद वो जो दे रहा होता है वो कम करके दे रहा होता है। अगर ऐसा हो तो ये सूद है। 10 ग्राम की चीज है, आपने 10 ग्राम की दी, उसने अब उसके बाद आपको 9 ग्राम की चीज बदले में दी। आप कहते हैं ना एक्सचेंज कर लेते हैं, खासतौर पे एक्सचेंज में ये होता है, जब आप एक्सचेंज कर रहे होते तो ऐसे, अगर एक्सचेंज करना है तो पूरा पूरा होगा, ये नहीं कि ये क्योंकि मेरा सोना पुराना है तो आपका सोना नया है तो इसलिए जो है ना वो आपको 9.5 ग्राम मिलेगा और आपने आपसे मैंने 10 ग्राम ले लिया ज्वेलर ये का है। और दूसरे एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, यानी किसी को आज दिया फिर ये नहीं है कि 6 घंटे बाद आके ले रहे हैं या 1 दिन बाद आके वो वापस अपना एक्सचेंज, आज मैंने आपको ये दे दिया ना मसलन 4 तोले सोना दे दिया तो चले मैं कल आके ले जाऊंगी जो आपसे मैंने लेना है, नहीं, ये लेन देन जो होगा वो उसी मजलिस में होगा, वो ट्रांजेक्शन एक ही मजलिस में होगी। अब बेशक आप 2 घंटे बैठ रहे हैं, 4 घंटे 6 घंटे बैठ रहे हैं उसकी दुकान के ऊपर, लेकिन होगी उसी एक ट्रांजेक्शन कह लें या गैदरिंग कह लें या मजलिस कह लें, तब तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप उठ के चले गए, मैं बाजार होके आती हूँ और फिर मैं आऊंगी तो फिर मैं बाकी का सौदा करती हूँ, नहीं, उसे बेहतर है फिर अभी फिलहाल आप कैंसिल कर दें। उसको कहते हैं वैसे ये मेरी चीज आप अपने पास रख ले, मैं आ रही हूं अभी तो फिर मैं कुछ इसकी बातचीत करती हूँ, कुछ लेन देन उस वक्त कर लेंगे, ठीक है। मगर ट्रांजेक्शन आपने स्टार्ट कर दी है, उसके बाद आप उठ के चले गए हैं और बाकी वापिस आके ट्रांजेक्शन बाकी मुकम्मल कर रहे हैं, ये नहीं करना। हाँ ये अलग बात है, ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई, अब आपने बाजार जाना है, बाकी चीजें लेनी है, अब आप कह रही हैं कि मैं घूमती फिरती रहूंगी, ये अपना गोल्ड साथ लेके फिरती रहूंगी, आप कहेंगे मेरी अमानत जरा थोड़ी देर के लिए रख ले मैं होके आती हूँ, वो ठीक है, मगर ट्रांजेक्शन मुकम्मल किए बगैर आपने उठना नहीं है, जुदा नहीं होना, यानी एक चीज लें और लें एक ही मजलिस में। यही बात चांदी की है, जब चांदी की बै होगी तब भी होगी। अब जिन लोगों ने नहीं सुना होता फिर वो बार बार पूछते हैं आप कहाँ से हवाले दे रही हैं, कहाँ से, जब आप पढ़ते ही नहीं है तो फिर क्या, मुस्लिम से जाके आप देखें आपको ये हदीस मिल जाएगी, हदीस भी अभी आपको बताती हूँ। अब यानी इसमें उधार की इजाजत नहीं कि आज मैंने कर लिया तो मैं कल आके आपसे ले जाऊंगी, ये नहीं करना, एक ही मजलिस और सेम मिकदार। हाँ अगर जिंस बदल जाए, मसलन एक तरफ सोना है दूसरी तरफ चांदी ले रहे हैं, तब कमी बेशी की इजाजत हो सकती है, इसलिए कि जाहिर है दोनों की कीमतों में फर्क है, उसमें फर्क है, फिर जो हो सकता है कि आप मसलन 10 तोले चांदी दें और वो आपको 5 तोले सोना दे दे, फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं, जिंस बदल गई ना, मगर सोने के बदले सोना कर रहे हैं या चांदी के बदले चांदी कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कर सकते। और उधार की फिर भी इजाजत नहीं है, ठीक है, उधार की फिर भी जब जिंस बदल गई तो अब कीमत बदल सकती है, उसका वेट बदल सकता है, मगर एक ही मजलिस में करना होगा। यही सूरत हाल करंसी की है, क्योंकि करंसी भी मिसल सोने चांदी के ही है। जब मसलन आप करंसी करने लगेंगे एक्सचेंज, तो कई दफा ऐसे होता है ना ईद वगैरह पे, हम मसलन हम 100 डॉलर लेकर गए, हमने कहा इसके 10-10 डॉलर के नोट दे दें। अब वो अगर मुझे, मैं 100 डॉलर लेकर गई कि मेरा नोट पुराना है, वो इसके बदले में मुझे 10-10 के नोट दे रहा है, पूरे 10 नहीं देता, वो मुझे 95 देता है, इसलिए वो कहता है कि आपका नोट जो है ना वो पुराना है और मैं आपको नए बिल्कुल दे रहा हूं। तो ये भी सही नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे सोने चांदी के अंदर आपने सोने को 4 तोले दिया और 4.25 तोले आपने उससे लिया, ठीक है। जैसे एक सहाबी थे, उन्होंने अपनी रद्दी खजूरें लेकर गए, यानी बिल्कुल ऐसे लो क्वालिटी की थी, वो ज्यादा थी, और उनसे जाके अच्छी वाली क्वालिटी की खजूरें खरीद ली, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी खजूरें कम थी, जाहिरी बात है कम ही होंगी क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की है और ये रद्दी क्वालिटी है। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फरमाया तुम जाकर उसको बेचो, रद्दी को बेचो पहले, फिर उस पैसों से नहीं खरीदो, वो ठीक है लेकिन एक्सचेंज नहीं आप ऐसे कर सकते। तो करेंसी में भी आप इस तरह का एक्सचेंज नहीं कर सकते। हाँ अगर जिंस बदल जाए, मसलन एक तरफ रुपीज है दूसरी तरफ डॉलर है, एक तरफ डॉलर है एक दूसरी तरफ रियाल है, अब जिंस बदल गई ना तो अब इजाजत है, अब जब बेशक 1 डॉलर के बदले आप 200 रुपया ले लें वो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो लेकिन जब ये जिंस एक ही हो, सेम हो, या जिंस डिफरेंट हो, अगर किसी वजह से अलग होना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दें, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे तो फिर शुरू कर लेना। अच्छा अब किन किन चीजों के अंदर ये रूल है, सब चीजों में नहीं है कि आप अदला बदला नहीं कर सकते, सिर्फ 6 चीजों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं जिनके अंदर ये अलाउड नहीं है। सोने की सोने से, चांदी की चांदी से, गंदुम की गंदुम से, जौ की जौ से, खजूर की खजूर से, और नमक की नमक से बै, इन 6 चीजों में शरीयत का ये हुक्म है जो मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं। और करेंसी का मैंने इसलिए बताया क्योंकि करेंसी भी सोने चांदी के ही उसके अंदर आती है। तो सूद की अब आपको 2 सूरतें पता चल गई, एक ये कर्ज दे के उसके ऊपर फायदा उठाना, जो कर्ज भी अपने साथ वापसी पे नफा खींच लाए वो सूद है, दूसरी इन 6 चीजों में शरीयत के अहकाम की पाबंदी करना, वरना ये भी सूद की शक्ल बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन होता है, इस्लामिक लोन, दूसरे बैंक से लोन लें या इस्लामिक से लोन लें, क्या करें? तो इसके ऊपर मैं कोई फतवा देने की मजाज नहीं रखती, मगर जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उलमा ने बैठ के कुछ सोचा, कुछ देखा, जो उनकी दलाइल देखें और उसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ ऐसे ही कह देना कि उसमें भी तो इतने परसेंट और उसमें तो भी तो इतने परसेंट है तो इसलिए वो भी सूद हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। सूद वो होता है जो कैपिटल पे होता है, याद रखें, कैपिटल पे, यानी मसलन मैंने आपको 1 लाख दिया और अल्लाह ना करेगी मैं कहूं कि आप मुझे वापसी जब 1 लाख की करेंगी तो आप मुझे 1.5 लाख करके देंगी, तो फिर वो फिर सूद है, जैसे आम बैंकों में होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूं ये 1 लाख ले लें, इसको बना लगाएं तिजारत में, तिजारत में लगाएं, कोई बिजनेस में लगाएं, घर खरीद लें, जो भी कर लें, उस घर को किराए पे दे देते हैं, और फिर इसका जो प्रॉफिट है उसमें से मेरा और आपका शेयर इतना है, चाहे 1 to 10% कर लें, चाहे 70-30 कर लें, चाहे 50-50 कर लें, कितना भी कर लें, कोई भी रेशो रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेकिन जायज है, वो हलाल है। प्रॉफिट के ऊपर लेकिन आपने परसेंटेज लगा ली वो जायज है, कैपिटल पे नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का ये होता है पता नहीं कितना आया कितना नहीं आया, या किसी महीने आया किसी महीने में नहीं आया, अलग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो कहते हैं ये नीचे नहीं जाती हैं, हमेशा ऊपर ही जाती हैं, मसलन लैंड वगैरह है या और कोई चीजें हैं या कोई स्टॉक्स हैं या कुछ भी, अब इतना नहीं मुझे पता, लेकिन जो भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको वो कहते हैं हमेशा इनकी वैल्यू ऊपर ही जाती है, तो ऐसी हो सकती हैं, अल्लाह से दुनिया में ही कोई कयामत आ जाए, तो उसमें अगर आपने परसेंटेज लगा ली है प्रॉफिट पे तो वो जायज है, मगर कैपिटल पे नहीं लगानी कि आप तुम्हारा तो माल चाहे
घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए, तो हमने तो इतना ही लेना है इसके ऊपर जो आम बैंकों का सिलसिला है। मगर सुना ये है कि इस्लामिक बैंकिंग जो है, जो इस्लामिक बैंक वगैरह हैं उनके अंदर ये प्रॉफिट के ऊपर वो लगाते हैं कि हम इसको हम तिजारत में लगाएंगे और उस तिजारत के ऊपर से आपको जो प्रॉफिट में से आपको इतना मिलेगा, और वो फिक्स्ड नहीं होता फिर, क्योंकि किसी महीने 6,000 आता जरूर है प्रॉफिट, लेकिन किसी महीने 6 आ गया, किसी महीने 6.5 आ गया, किसी महीने 7 आ गया, किसी महीने 5.5 आ गया, इस तरह से है फिक्स अमाउंट, इस तरह से कि परसेंटेज फिक्स्ड है। परसेंट मतलब 2% प्रॉफिट का 2% आएगा या 10% हम आपको दिया करेंगे, तो वो प्रॉफिट जाहिर है कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। लेकिन जो दूसरे बैंकों में है वो इतना तो मस्ट ही मस्ट है कि आपने सेविंग अकाउंट में अगर अपना खुलवाया हुआ है, पैसा रखा हुआ है, तो आपको मसलन वो कहते हैं हम 2% आपको देंगे, तो अब वो आपने 1 लाख रखवाया हुआ, तो 1 लाख पे 2% आपको मिलता ही रहेगा, चाहे अब वो पैसा डूब रहा है, चाहे वो पैसा बन रहा है, चाहे किसी महीने ज्यादा प्रॉफिट है, किसी में कम प्रॉफिट है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर उन्होंने आपको 2% देना है, प्रॉफिट पे नहीं कहा हुआ। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हमें ये भी समझ आ गया कि सूद लेना देना, इसको लिखना, इसके ऊपर गवाही देना, ये सारे ही वो लोग हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब बराबर हैं, सबके ऊपर लानत है, ये मुस्लिम में रिवायत है। फिर इमाम हाकिम ने अपनी सनद में ये रिवायत बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला पे हक है कि वो 4 आदमियों को जन्नत में दाखिल ना करे और इनको जन्नत की नेमतें भी ना चखाए, आदि शराबी, सूदखोर, नाहक माले यतीम खाने वाला और माँ बाप का नाफरमान, और साथ हलाक करने वाले गुनाह हैं जिनसे बचने की 7 मुबिकात जिनको कहा जाता है, 7 ऐसे गुनाह जो हलाक कर देंगे, उनमें भी एक सूद है। अल्लाह अकबर। अब हम इसको तो बुरा समझते ही नहीं है और सोचते हैं कि सूद हो गया तो क्या हो गया, कोई सूद पे घर लेता है, कोई सूद पे कारोबार कर रहा है, कोई सूद पे कुछ कर रहा है, तो हम उसको बड़ी तारीफें करते हैं, बड़ी उसको शाबाशियां देते हैं, बड़ा कामयाब हो गया, घर बना लिया, पता नहीं है कि वो सूद के ऊपर घर लिया हुआ उसने, पता नहीं है ये कारोबार सूद के ऊपर उसका चलने लगा हुआ है। तो ऐसी चीजों से बचना जरूरी है, ये हराम है, क्योंकि जो सूद में पड़ेगा तो फिर सोचें अल्लाह की रहमत से ही दूर हो गया, उसका क्या फिर बच गया जो अल्लाह की रहमत से ही दूर हो गया। इसीलिए कहा गया ये अब तुम्हारे पास बात आ गई, फन तहा रुक जाओ, जो रुक जाएगा ना, फन तहा जो रुक जाएगा, तो उसका मामला ये है कि पिछला जो गुजर गया वो गुजर गया, उसके ऊपर अल्लाह करेगा कि पूछ नहीं होगी, क्योंकि उसको पता नहीं था, या तो इल्म ही नहीं था, या अभी हुक्म ही नहीं आया था, और उसका मामला फिर अल्लाह ताला के ऊपर है। लेकिन जो फिर भी करता रहा, फिर उसके लिए ये है कि उसके लिए जहन्नुम है, साफ लिखा हुआ यहाँ। अब ये जो बैंक वगैरह में होते हैं, आप देख लें कि उनको नहीं ये परवाह, वो किसी को जब देते हैं लोन देते हैं तो उन्होंने सूद समेत वापस लेना होता है, आप चाहे क्रेडिट कार्ड की सूरत के अंदर लोगों को देते हैं चाहे कुछ है। अब उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता जाता है, यानी पहले अगर मसलन 1 लाख था तो अब सूद चढ़ के वो 1.25 लाख हो गया, अब 1.25 लाख के ऊपर और सूद लगा, फिर 1.5 हो गया, फिर 1.5 के ऊपर वो और सूद लगाते हैं, और फिर इस तरह वो बढ़ता ही जाता है, यानी वो बंदा उस साइकिल से निकल ही नहीं पाता। उसका कर्जा 1 लाख उसने लिया था, 10 साल बाद वो 1 लाख तो रहा नहीं, वो तो 2 लाख बन गया, डबल हो गया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता चला गया उसके ऊपर, और सूद 10 सूद। तिजारत में मेहनत होती है, वक्त लगता है, इंसान का रिस्क होता है कि ये पता नहीं अब फायदा होगा नुकसान होगा क्या होगा, मगर सूद वाला तो उसकी ना कोई मेहनत है, ना कोई वक्त लग रहा है, ना कोई कुछ है, ना कोई जहानत लग रही, ना उसका कोई रिस्क है, उसने तो जो दिया है ना उसका 100% आना ही आना है। तो वो क्योंकि दूसरे का खून चूसता है ना, दूसरा चाहे लुट जाए बैंकरप्ट हो जाए,
लेकिन उसको अदा करना ही है, इसको कोई ये नहीं हमदर्दी होती है कौन किस हालात से गुजरा। इसीलिए आप देख रहे हैं कई लोगों ने कर्जे लिए होते हैं, जब वो बैंकरप्ट होते हैं उनके घर लुट जाते हैं, उनके कुछ भी नहीं उनको रहता, यानी सड़कों पे आ जाते हैं, फिर कई लोग खुदकुशियां कर लेते हैं। ये इतनी बुरी चीज है कि आज दुनिया इसको, कई ममालिक ने इसको जान लिया है कि ये इसके अंदर फायदा नहीं है, और बजाहिर देखने में फायदा नजर आ सकता है, लेकिन अंदर अगर इसकी डेप्थ में देखें तो इसके अंदर कोई ऐसा फायदा नहीं है। इसीलिए बाज जगहों के ऊपर, जैसे मैं पढ़ रही थी स्विट्जरलैंड में, उन्होंने 0% कर दिया, जो कि स्टेट बैंक का उनका जो लोन देने का 0% पे देते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। लिहाजा जो भी सूदी चीजें हैं, इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि ये हराम है, तो उनके अंदर हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है। ये हमें, हमारा ईमान होना चाहिए और इसे बचना है। जो पहले ले चुके हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है, उस वक्त नहीं पता था ना, अब तो पता चल गया। अपने बच्चों को भी उस लाइन में ना डालें जिसमें आगे जाके जो जॉब्स मिल रही हैं वो सारी सूदी हैं। ऐसी कई जॉब्स हैं जो सिर्फ सूद की ही हैं, और वो अब उनको सूद में पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस लाइन में ही नहीं डालें कि बाद में ये मसले हो। और जो तौबा करना चाहे, अल्लाह ताला के ऊपर उसका मामला है, लेकिन तौबा करके कम से कम इंसान इससे निकलने की कोशिश करे। और तौबा कैसे करे कि पछताए इसके ऊपर के जो हो चुका, आइंदा ना करने का अहद करे, इस्तिग़फ़ार करे। और जो इसको हराम समझने के बाद भी खाता रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो जहन्नमी है। इससे ज्यादा वाजे क्या बात हो सकती, कितना बड़ा गुनाह है ये। हम सिर्फ शराब पीने वाले को बड़ा गुनाहगार समझते हैं, हम सिर्फ जानी को बड़ा गुनाहगार समझते हैं, लेकिन ये देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खोर अपना माल कितना ही बढ़ा ले उसका अंजाम मुफलिसी है। इन्हें फकरो फाका, इस शोबे में कोई आगे पनप नहीं सकता।